बहरहाल ये सारे हालात के साथ हम इस पारे पे आ गए हैं। बड़ा ही खूबसूरत ये पारा है, और इस पारे की शख्सियत अबू अय्यूब अल अंसारी, कि जिनको अल्लाह ने अपने नबी के लिए चुना। बाद में बात नहीं होती इसलिए अभी समझ लीजिए, चूँकि बात भी हमारी चल रही है इस पारे में। मैंने आपको शुरू में जो पारे के जंक्स देना चाहे उसमें यह है कि ये पारा नबी की हिजरतों से लेकर सहाबा कराम की मेहमान नवाजियों और फिर जान निसारियों पर मबनी है। इस पूरे बारे में हम सूरह बनी इसराइल जो पढ़ने वाले हैं ना, इसके अंदर आप देखेंगे कि किस खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने ये चीज़ें सामने रख दी कि ये वो लोग थे कि जिनके बिहाफ पे नबी ने बड़े बड़े फैसले कर दिए, बड़े बड़े फैसले कर दिए। कैसे सफ़र इसरा का और हिजरत और फिर उसके बाद गज़वे बदर, बैत अकबा, ये सारा कुछ ये बताता है कि जब कोशिशें सही रुख पे होती हैं, साथी अच्छे मिल जाते हैं, तो अल्लाह की तरफ से रहमतें नाजिल शुरू होती हैं। अबू अय्यूब अल अंसारी वो खूबसूरत सहाबी थे जिनका ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के साथ था। पीछे भी हमने थोड़ा सा जिक्र पढ़ा था जब अल्लाह के नबी के घर का घिराव किया गया था। यहाँ भी इस बात को समझ लीजिएगा कि इस पूरे पारे में आपको सहाबे कराम बतौर सुल्तानन नसीरा दिखेंगे। सूरत बनी इसराइल के आखिर में अल्लाह ने सुल्तानन नसीर की बात की थी, गलबे की बात की थी। यानी सूरत बनी इसराइल में अभी हम सुल्तानन नसीर की बात देखेंगे। पूरे पारे में आप देखिएगा कि नबी को सहाबा की सूरत में सुल्तानन नसीर मिले थे। आसान लफ्ज़ कह देती हूँ, अच्छे साथियों का मिलना अल्लाह की तरफ से एक गलबा मिलने की निशानी होती है। हम इसमें बनी इसराइल आयत 80 में पढ़ेंगे, वक़ुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिदकिन वाखरिजनी मुखरजा सिदकिन वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। हिजरत की राहों में ये दुआएं थी। आप भी अल्लाह के रस्तों में निकलते ना, दुआएं मांगा करें कि अल्लाह इन रस्तों में अब तू मुझे खुद ही मुआविनीन दे दे और सब कुछ। तो बहरहाल पारे के आगाज़ में सफ़रे मेराज, और मज़े की बात देखिए पारे के एंड पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म के सफ़र की कहानी है। और पूरे पारे में हैरत अंगेज़ हद तक आप देखेंगे लफ्ज़ किताब, आज आपने नोट करना है लफ्ज़ किताब। कहीं अमालनामे के लिए आएगा, कहीं तौरात के लिए आएगा, यानी कुरान के अलावा दो इल्हामी किताबों के लिए आएगा। मसलन तौरात सूरत बनी इसराइल की आयत 2 में भी आ रहा है लफ्ज़, और 4 में भी आ रहा है। ज़बूर बनी इसराइल की आयत 55 में आएगा, ये आप नोट करेंगे। दो अहम किताबों का जिक्र है। फिर इसी में 58 आयत में लोहे महफूज के लिए लफ्ज़ किताब आएगा, और फिर नामे अमाल के लिए लफ्ज़ किताब सूरह बनी इसराइल की आयत 13, 14 और 71 में आएगा, और उसके बाद फिर सूरह कहफ की आयत 49 में आएगा। याद दहानी के लिए बीच में किस्सा आदम और इबलीस है, बनी इसराइल सूरह की आयत 61 से 65 में। फिर दोबारा यही किस्सा आपको सूरह कहफ की आयत 50 से ऑनवर्ड मिलेगा। फिर अगली बात नोट कीजिए कि इस बारे में लफ्ज़ कुरान लिखिए ज़रा। पहले सूरह बनी इसराइल की आयतें बोलती हूँ, फिर कहफ की बोलूँगी। बनी इसराइल की आयत 9, 106, 105, 89, 88, 82, 78, 60, 46, 41, 45। कभी आज तक आपने कुरान खानी में 15वें पारे के दौरान ये बात नोट की? कुरान खानी छोड़ दीजिए, आपने दौरे कुरान भी 10-12 किए होंगे, कभी नहीं नोट की होगी, क्योंकि तदब्बर का वक्त नहीं होता। लेकिन हमें तो करना है, इसलिए कि हम इसको सिर्फ आदतन नहीं कर रहे, ये इबादतन कर रहे हैं। आगे लिखिए सूरह कहफ की आयत 1, 27, 29 और 54। ठीक है, यानी इतना ज़्यादा इस बारे में किताब और कुरान का जिक्र है। फिर उसके बाद कुरान की दावत के जवाब में दो तरह के लोग सामने आते हैं। एक वो जो कुरान की दावत को मान लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो सहाबे रसूल की सूरत में सुल्ताना नसीरा की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो कुरान को नहीं मानते, उनको कुफार कहते हैं। सूरत कहफ पूरी की पूरी दजल, दुनिया के धोखे और हुब्बे दुनिया और इसी तरह के फितनों से भरी हुई है। जहाँ वो सूरत आएगी वहाँ आपको बता दूंगी, लेकिन यहाँ इस बात को नोट कीजिएगा कि इस पारे के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दुआ सिखाई जा रही है वो मैं पहले पढ़ देती हूँ। فَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. کہیں بھی داخل ہونا یہ دعا پڑھا کریں, اور پلیز اس کو آگے نہ کریں سب کے لخ کے لگا کر. ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے یہ دعا پڑھو اتنی بار پڑھو تو یہ ہوگا, یہ پڑھو تو وہ ہوگا, یہ کرو اتنی دفعہ. اللہ کے نبی نے کوئی تسبیحوں پہ نہیں پڑھے تھے, کوئی گن کے نہیں پڑھے تھے, یہ دل کی باتیں. آپ صبح گھر سے ادھر آتے ہیں نا, پڑھ کے آیا کریں. اس گھر کے اندر ڈور میں آتے ہیں نا, ربی ادخلنی مدخلا صدقن. آپ یہاں سے نکلیں گے اپنے گھر میں جائیں گے, ربی ادخلنی مدخلا صدقن. شوہر کو کہیں آپ کام پہ جاتے ہیں پڑھے. اب یہ وظیفے نہیں ہیں اللہ کے بندو. کسی نے دو دن پہلے ایک عجیب و غریب میسج بھیج کے پوچھا یہ ٹھیک ہے؟ اللہ کی بنا, اللہ کی بنا, اللہ کی بنا, اللہ اس قوم کی جہالت دور کر دے. 16ویں روزے یہ دعا اتنی دفعہ, 17ویں روزے یہ دعا, 18. آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی جگہوں پہ آج 17واں روزہ ہے, یہ کیا تھا؟ کتنوں کو پتا 17 رمضان یوم بدر تھا, اور آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. کس کو پتا تھا؟ آپ کو وظیفہ بنا دے کہ بدر کے صحابہ 313 تھے, پھر وہاں اللہ کے نبی نے ایک دعا کی تھی, اللہ آج یہ اخلاق, چلو جی اس کو 313 بار 17 رمضان کو پڑھو. یہ کیا ہے ہماری اس جاہل امت نے, اور ہم جیسے دینداروں نے صرف لوریاں دی ہیں. واللہ ہی صرف ہم نے قرآن کا ایک نام دیا ہے کہ اس کو پڑھ کے ختم کر کے تراویوں میں بعد میں مٹھائی اور کیکوں کے ڈبے بانٹ دو. اب آنے شروع ہو گئے ہیں ڈبے, ہمارے گھر میں بھی آئے تھے, کل پرسوں بھی آئے تھے. اب ہر روز رات کو مردوں نے گھر آ کے پوچھنا ہے آج کوئی ڈبہ نہیں آیا, اور ڈبے بھی پھر ایک ہی دکان کے آتے ہیں آپ کے, پہلے ہی پتا ہوتا ہے اندر کیا ہے. کمال ہو گئی. میں کہتی جس استقامت سے پچھلے 20-25 سال سے یہ بیکری ادھر سرو کر رہی ہے, کبھی آپ کر رہے ہوتے تو آدھا کراچی روشنیوں میں ڈوبا ہوتا ان شاء اللہ. اللہ ہمیں استقامت دے دے. تو بہرحال یہ پیار اور محبت کی باتیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر تھا اور آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آئے, پھر کہوں گی کہ مکہ مکہ آپ لفظ لکھ لیں مکہ, اور جو ماشاءاللہ خوبصورت طریقے سے حیدرآبادی لوگ بولتے ہیں مکہ, وہ مکہ ہی لگتا ہے. اور انگلش میں بھی جب لوگ یہ جو ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں نا, تو مکہ ہی بولتے ہیں, مکہ نہیں بولتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب محمد رسول اللہ بنے, محمد بن عبداللہ سے جب محمد رسول اللہ بنے, اس رستے کی ساری کہانیاں امت مسلمہ کے عروج کے زینے بنے. صحابہ کو اللہ نے اس میں استعمال کر کے یہ سارا کچھ سکھا دیا کہ آج بھی 2023 سے آن ورڈ تم چاہتے ہو دنیا میں سلطان النصیر ملے, تمہیں بھی مسلمانوں عروج ملے, تم بھی بنی اسرائیل کی اس ہسٹری سے عروج لینا چاہتے ہو, تو تمہیں وہی میتھڈالوجی استعمال کرنی پڑے گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, تمہیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا, اور وہی بقا کی کیفیت جو سورۃ کہف کی آیت 6 فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہ بقا نہیں ہے, اگر آپ کی میری امت میں اگر اہل بقا کچھ ہو جائیں تو کتنے زیادہ تہجد تراوی پڑھنے والے اور تراویوں میں قرآن سنانے والوں سے بڑا کام کر جائیں گے. اس وقت امت کو درد والے لوگوں کی ضرورت ہے, علم والوں کی نہیں. اللہ کی رحمت سے امت کے پاس علم والے خزانے پڑے ہیں. آپ نے تو وہ دیکھے نہیں عالم, وہ کوئی آپ کی طرح سوشل میڈیا پہ نہیں گھوم رہے ہوتے. آج بھی میں خود پرسنلی کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں, کسی چینل پہ آپ ان کا نام نہیں دیکھیں گے, لیکن وہ علم کے پہاڑ ہیں, تقوی اور ورا کی چٹانیں ہیں. ان کے عمل دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ ہم تو سیدھے جہنم میں جانے والے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے, بخا دعوت میں علم سے زیادہ درد ڈالیے, کتابیں پڑھنے سے زیادہ لوگوں کے حالات دیکھیے, اور پڑھ کے اور کورسز کر کے میں علم کا پہاڑ بن جاؤں, اس سے زیادہ انسانوں سے پیار کیجیے. ہم اپنی سیلف گرومنگ میں پڑے رہتے ہیں, کام پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک صفائی کرنے والا مزید کورسز کرتا جائے, صفائی کیسے کرنی, ڈیپ ڈاؤن صفائی کیسے, اب اس میں ہائیجینیکلی کیسے کرنا ہے, اس کو وائرس پروف کیسے کرنی ہے چیز کو, اس کو بیکٹیریا سے پاس کرنا ہے, اور کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوں. آج ہماری امت کا یہ حال ہے, گندگی اپنی عروج پہ, فحش بہشائی, اور ہم اپنے علم کی چٹانیں بن رہے ہیں. مزید صفائی کریں بھائی, کام تو شروع کرو. لیکن ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے تو شروع کرے پریکٹس, ساتھ ساتھ پھر ریفریشنگ کورسز چلتے رہیں گے, خود بھی پڑھے گا تو پڑھائے گا نا, اور خود ڈاکٹروں کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے؟ ایک دفعہ کبھی بھی نہیں. یہ کرونا کس ڈاکٹر کی کتاب نے پڑھا تھا, کس میڈیکل والے نے آج سے کوئی 4 سال پہلے کے کورسز میں بھی کرونا پڑھا ہوگا؟ پڑھنا پڑا نا کہ کیا مصیبت ہے, تو نکلے نا. بالکل دائیے دین کو ساتھ ساتھ یہ کام کرنے خود ہی مل جاتے ہیں فطری طریقے کے ساتھ. اور پھر ہوا کیا, कि अल्लाह ने दुआ कबूल की नबी की, सुल्तानन नसीरा वाली। क़ुरान की ये बहारें, ये दायमी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने सहाबा से लिया। दीन इस्लाम की तकमील और ये सहाबा हकीकत में कल से लेकर आज तक हमारे सामने हैं। ग़लबा इस्लाम चाहते हो? चाहते हैं। अस्हाबे रसूल जैसा किरदार अदा करो। आप अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद नबवी को सामने रखें ना, मक्की दौर दावत की अलामत थी। मुझे पता है आपको लिखना मुश्किल लग रहा है, लेकिन लिखें, क्योंकि ये चीज़ें शायद ज़िंदगी में फिर कभी आपको ना मिलें। मक्का में नबी का दौर दावत था। उधर चार चीज़ें थीं, सादिकल कौल, सादिक और अमीन लिख लें चलें, साबिरुल अमल, बात में सच्चे और अमल में सब्र। दूसरी चीज़ थी दावत इल्लाह। तीसरी उस दौर की एक बड़ी चीज़ थी हिजरत हबशा। 16 अफराद, यानी कह लीजिए कि 4 ख़वातीन थी और 12 मर्द थे, टोटल 16 थे। हिजरत हबशा होती है, दोबारा फिर एक दफ़ा हुई तो 100 लोग थे, जिसमें 82 मर्द थे और बाकी 18 औरतें थीं। और 6 कह लीजिए कि ऐसी शख्सियात आपको मक्का में से उभरती हुई दिखती हैं कि जिनको साबिकून अलवलून कहा गया। 12 अंसारी साहबा ने बैते उकबे उला में हिस्सा लिया। मुसअब बिन उमैर की माइयत में मदीना रवानगी हुई। मुसअब बिन उमैर, पहले मुकरी कहते हैं इनको, नबी नहीं थे मदीना में। मुसअब बिन उमैर गए, आज की ज़बान में के कैसेट्स लेकर गए, रिकॉर्डिंग्स के साथ क्लासेस शुरू कर दी, टेप्स चला दी, लिंक्स दे दिए। नबी की आवाज़ सोहाबा ने नहीं सुनी हुई थी मदीना में आपके आने से पहले, तस्करे थे। फिर बैत अकबा सानी हुई, जिसमें 73 लोग आए, जिसमें 2 औरतें थीं। ये मक्की दौर का जस्ट है, जिस कह लीजिए। और उसके बाद जब हिजरत मदीना हुई, ये इनकलाब है, ये जिसमें इस वक्त आप और मैं दाखिल होने लगे ना, सूरत में ये इनकलाबी सूरत है। हम कैसे इसको बुरा कर सकते हैं? मदीना के दौर को आप 10 साल को 2 हिस्सों में बाँट दें, हुदैबिया से पहले का दौर और हुदैबिया के बाद का दौर। हुदैबिया से पहले का जो दौर था ना, इसकी 2 चीज़ें हैं बस, क़िताल और दावत इल्लाह। बदर से सिलसिला शुरू हो गया 1 साल के बाद ही, हर साल लड़ाई, हर साल लड़ाई, और साथ हल्की फुल्की दावत थी। हुदैबिया के बाद लड़ाई रुक गई और दावत इल्लाह, और साथ ही साथ इस्लामी मुआशरे के क़याम में मददगार चीज़ें नाजिल हुई। ये पूरी सूरत बनी इसराइल जो आप और मैं पढ़ेंगे ना, ये एक इस्लामी मुआशरे के इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक फलाही रियासत बनेगी, तो उसमें आज अभी पॉइंटर लेकर ना शुरू से लेकर आखिर तक गिनिएगा कि आपके अगले लेजिस्लेशन, आपके अगले कानून में क्या क्या शिक़े होंगी। यानी आप कह लें कि पाकिस्तान का फ्यूचर लॉ पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह, जिन बुनियादों पर इस्लाम ने आना, और इस रस्ते के राही सहाबे कराम। फिर अल्लाह के नबी दुनिया से जाते हैं तो अहदे सहाबा शुरू होता है, उधर भी फितने, इधर भी फितने, उधर भी क़िताल, उधर भी। इसी दौरान फिर कुरान की तदवीन हुई, हदीस को सेफ किया गया, दावत इल्लाह हुई, घर घर मदरसे बने, इकामत दीन हुआ। और उसके बाद सिर्फ हज़रत उमर के दौर तक 3 बड़े आज़म कॉन्टीनेंट्स, 84 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम पहुंच गया। वजालनाकुम, ये है आपके सामने लिखा हुआ सुल्तानन नसीरा। आप और मैं तो भी ये छोटे छोटे हलके बनाकर बैठे हैं, आपके बाद तो ये बड़ी बड़ी फौजें बननी है इंशाल्लाह। ये वक्त आना है, मैं हूँ ना हूँ, आप हो ना हो, अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा का रूज आसमान पर लिखा हुआ है, उसमें मेरा आपका हिस्सा डल रहा है कि नहीं डल रहा, ये हमारा नसीब है। हम दूर खड़े तमाशा देख रहे हैं, ये हमारी बदबख्ती है। हम दुनिया को देख रहे हैं क्या गंदगियां फैला रही है और हम अफसोस कर रहे हैं, ये कोई अफसोस का हक नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लम की उम्मत के उभरने की बात है, उम्मत मुस्लिमा को रूज देना है कि नहीं देना, अपने आप को वर्ल्ड लीडर बनाना है कि नहीं बनाना। आपके चुन्ने मुन्ने 18-20 साल के भी अभी बेबी बने फिर रहे हैं, और आप उनको कहते हो मेरा बेबी है, अच्छा बर्गर ले आओ, फिर चीज़ ले आओ, अच्छा ये डाल दो, वो कर दो। इनको वो दीजिए कुव्वत जो असहाबे कहफ में थी। ये पढ़ेंगे इस बारे में, आपकी तड़प के साथ, आपकी दुआओं के साथ कबूलियत की ये बातें हैं। और इसके लिए अल्लाह ने सबसे पहले जिसको चूज़ किया वो थे अबू अय्यूब अल अंसारी, इस पारे की शख्सियत। तीन बड़ी वजूहात की बुनियाद पे उनको इस पारे के साथ रखा गया। नंबर एक, सारी ज़िंदगी जिद्दोजहद करते रहे जिहाद की सूरत में। हज़रत अमीर मुआविया के दौरे हुकूमत तक ये जिए और 80 साल की इनकी उम्र थी और जिहाद करते थे। जितनी जंगें हुई हर जंग में अबू अयूब अल अंसारी मौजूद थे। बीमारी के बाद जब लड़ाई में शिरकत ना कर सके तो लश्कर इस्लाम को अपनी आखिरी ख्वाहिश बताते हुए कहते हैं कि मेरी लाश को उठाए जाना और कुस्तनतीनिया की दीवार के नज़दीक दफन करना। पता है आपको इनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई थी? क़ुरान से गहरा शगफ, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते नहीं थकते थे और मूसा अलैहिस्सलाम की तरह इल्म का शौक़ सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए लंबा सफ़र किया। ये थे अबू अय्यूब अल अंसारी। अब इनके फ़ज़ाइल बयान करें ना तो वक्त कम हो जाएगा। बैत अकबे सानी में भी शिरकत का शर्फ हासिल हुआ, यानी वो डॉक्यूमेंटेशन में भी मौजूद थे जो नबी को मदीना बुलाने के लिए की गई। और नबी सल्लम के साथ बदर से तबूक तक हर जंग में ये शरीक रहे। और इनकी जो सबसे बड़ी वजह शोहरत है, जो शायद आपके भी जहनों में आई होगी, वो मेज़बान रसूल। मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद नबी की मेज़बानी का शर्फ अबू अय्यूब अल अंसारी को हासिल हुआ। देखिए, लोग ज़ाहिर को देखते हैं, जो नज़र आता है, पीछे कौन कौन है उस काम के करने कराने में, उसमें मेज़बान होते हैं। वो किसी को नहीं दिखता, वो सिर्फ़ अल्लाह को दिखता है। नबी मक्का से मदीना आए, 500 मील का सफ़र, एक लग्जरियस कोच में तो नहीं हुआ 5-6 घंटे, और अब तो माशाल्लाह एक ट्रेन चल गई, 2 से 2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। बीच में स्नैकिंग भी और ABCD भी है। किस थकन के साथ मदीना उतरे होंगे और किसने आपको अपने घर के अंदर दाखिल किया? अबू अय्यूब अल अंसारी थे। मैं आपको इनका किस्सा हदीस से सिर्फ पढ़ के सुना देती हूँ कि इनको इज्जतें क्यों मिली। मैंने अपने लफ्ज़ों में पीछे सुनाया था, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब टैक्स के साथ पढ़ूँ। और ये रिवायत जो आपको सुनाने लगी, ये सही मुस्लिम की है। अबू अय्यूब अंसारी ख़ुद रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी मदीना तशरीफ़ लाने के बाद उनके यहाँ क़याम पज़ीर हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदान निचली मंजिल में रिहाइश इख्तियार की, नीचे वाला फ्लोर, ये ऊपर चले गए। अबू अय्यूब अल अंसारी बालाई मंजिल पर थे। एक रात अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हु जागे तो ख्याल आया कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक के ऊपर चलते फिरते हैं। बस इस ख्याल से रात एक सिमत हटकर, यानी एजिस पे, किनारों पर, कोने कोने में गुजारी। सुबह हुई तो अल्लाह के नबी से अपने दिल की बात की। आपने फरमाया कि निचली मंजिल में लोगों से मुलाकात करने और आने जाने में मेरे लिए आसानी है। अबू अय्यूब अंसारी ने अर्ज़ की, जिस मकान की निचली मंजिल में आप रिहाइश पजीर हों, मैं उसकी बलाई मंजिल में क़याम नहीं कर सकता। और जिस तरह के हर मेहमान को अपने मेज़बान की बात माननी चाहिए, वो नबी थे, लेकिन उन्होंने अबू अय्यूब अल अंसारी की इस ख्वाहिश का एहतराम किया और फिर आप ऊपर चले गए और अबू अय्यूब नीचे आ गए। ये मुस्लिम की रिवायत है। जिनके दर्जे होते हैं ना, उनके पीछे कोई ख़ूबी ज़रूर होती है। अल्लाह ने उनको ये ख़ूबी दी और इनको ये मेहमानी मिली क्यों? क्या रिलेशन था? आपको पता है कि अबू अय्यूब अल अंसारी बहुत गरीब साहबी थे। सरदार तो सरदारों के घर जाते हैं, बड़े लोग बड़े घरों के मेज़बान होते हैं और मेहमान भी होते हैं। इनको मेज़बानी किस खूबी पर मिली, ये भी सुन लीजिए। हज़रत अनस कहते हैं कि मदीना में दाखिल होने के बाद अल्लाह के नबी ने पूछा, हमारे दोस्तों में से किसका घर करीब है? अबू अय्यूब अंसारी ने अर्ज़ किया, मेरा या रसूलुल्लाह। ये रहा घर और ये रहा घर का दरवाज़ा। आपने फरमाया, अच्छा जाओ, जाकर हमारे आराम का बंदोबस्त करो। अबू अय्यूब ने अर्ज़ की, तशरीफ़ लाएं, अल्लाह मुबारक करे। ये बुखारी के लफ्ज़ हैं। अल्लाह के नबी ने किस लिए इनका घर चूज़ किया? करीब था, मकसद से करीब थे, आना जाना आसान था। और वो वाक़ा तो आप 20 बार सुन चुके हैं कि ऊँटनी पहले एक जगह बैठी, फिर उठी, फिर गई। वो मैंने आपको नवे पारे के साथ सुनाया हुआ है, वहाँ से सुन लीजिएगा जाके, कि अपना घर बनाने से पहले आपने अल्लाह का घर बनाया। तो अय्यूब अंसारी अपनी बीवी से खुसर पुसर किया कर रहे थे। बीवी ने कहा कि ये बात दूसरों को ना कहना, आपके घर कैसे आएंगे वो तो सरदार है। और दाद बिन मास बड़े अमीर थे, असद बिन दुरारा को जाकर पढ़िए, उस दौर के करोड़पति लोग थे वो। अल्लाह के नबी उनको छोड़कर कहाँ आ रहे हैं अबू अय्यूब अंसारी के घर पे, क्योंकि फ़ायदा था, सहूलत ही गुरबत में बड़ा फ़ायदा होता है। और लहसुन और प्याज खाना छोड़ दिया था अबू अय्यूब अंसारी ने अल्लाह के नबी के नापसंद करने की वजह से। हदीस सुन ले, मैं क्या बोलूँ, मेरे सामने भी हदीसें खुली हुई हैं। कहते हैं कि मेरे घर क़याम के दौरान मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में खाना पेश करता, जो मेरे पास होता मैं सब भेज देता, आप अपनी ख्वाहिश से उसमें से खाते और जो बच जाता वो मुझे भेज देते, कोई बुरी बात नहीं थी। एक रोज़ आपने खाना खाए बगैर वैसे का वैसे वापस भेज दिया। अब ये परेशान है, क्या हुआ? अब देखिए ना, मेहमान खाए ना तो मेज़बान की जान पे बन जाती है। खाला के नबी खैरियत, कोई बात बुरी लग गई, ये है वो है। कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके खाने में कच्चा लहसुन था। खाला के नबी, क्या लहसुन हराम है? कहा हराम तो नहीं है, मगर नागवार बू की वजह से मैं इसको पसंद नहीं करता। अब वो यूँ कहते हैं, जिस चीज़ को आप नापसंद फरमाते मैं भी इसे नापसंद करता हूँ। आज आप और मैं लहसुन सिर्फ इसलिए घर में आने ही ना दें कि अल्लाह के नबी को नापसंद था। ये मोहब्बत के सौदे, इसमें कोई हलाल हराम मकरू नहीं। अब लहसुन तो निकाल दें, प्याज छोड़ दिया तो हमारे खाने पकेंगे? कच्ची प्याज और लहसुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खाते थे, ख़ास तौर पे मस्जिद में जाते हुए नहीं खानी चाहिए, क्योंकि फरिश्तों को बू आती है आपके मुँह से। और आपका बचा हुआ खाना अबू अय्यूब बड़े अहतमाम से खाते थे, ये भी हदीस है मुस्लिम की। अल्लाह के नबी के लिए जब खाना जाता और वापस आते तो उनके खादिम कहते हैं कि अल्लाह के नबी की उंगलियां खाने पर जहाँ जहाँ लगी होती, अब वो यूँ भी उसी जगह जगह अपनी उंगलियां रख कर खाते थे। ये मुस्लिम की रिवायत है। तो ये मोहब्बतें हैं, ये फ़र्ज़ नहीं होते। ये लिखिए वही जो टॉपिक है कि डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं थी, ये तो मोहब्बत के सौदे थे। कानूनी हदों पे गिन गिन के नाप तोल के, जी मेरे एग्रीमेंट में ये लिखा है, जी मैंने तो ये कहा था, जी मेरे साथ तो इतनी पे लिखी गई थी और मेरे साथ तो इतने घंटे लिखे थे, ये लोग काम नहीं करते। वो बड़ा मखतूर काम होता है, आज एक जुमला लिख लें, इस जुमले से मेरे दिल में आ गया, हमारे एडमिन्स के तो दिलों पर लिखा हुआ है माशाल्लाह, जिम्मेदारान को ज़ुबानी याद है, आम लोग भी लिख लें। जहाँ भी काम गिन मित के होगा ना, लेन देन के साथ, बड़ा लिमिटेड होगा, क्योंकि हर एक के पास लिमिटेशन है। वो इतने एम्प्लॉय रख ही नहीं सकता, चलो जी फारिग, इतने घंटों की पे नहीं दे सकता फारिग। जहाँ काम वॉलंटियर होगा वो बेहदो हिसाब होगा। जितना खुल के आप काम करते हैं ना, उसके पीछे समझ लीजिए कि उसमें फिर तो कंगाल हो जाएं वो इदारे। मैं आज अपने ऊपर लेकर कहती हूँ कि नूरुल कुरान में काम करने वालों को, जिनका है नूरुल कुरान, मैं तो उन्हीं का कहती हूँ, ये कोई इम्प्लाई थोड़ी है, यानी जो लोग इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पे वॉलंटियर कर रहे हैं ना, वल्ला ही अगर उनको ये इदारा पे करने लग जाए तो बैंक करप्ट, बिल्कुल बैंक करप्सी हो, जितना ये काम करते हैं। और मज़े की बात है, किसी के सर पे नहीं किसी ने काम दिया, वो खुद करते हैं, मांगते हैं, या सलून का कुछ हमारे लिए लायक, कुछ हमारी खिदमत, कोई कुछ, यही लोग काम करते हैं। एक होते हैं जिनको लोग ढूंढ रहे हैं, छोड़ दीजिए उनको, एक को जन्नत ढूंढती है, एक जन्नत को ढूंढता है। लोग जवाब का ले आपसे लेंगे, दूसरे से ले लेंगे, तीसरी जगह चले जाएंगे, पैसे आपने $100 दिए तो वो अगली जगह $150 पे चले जाएंगे। ये कच्ची बुनियादें हैं। ये सुल्तानन नसीरा जो है ना, ये गलबा इस्लाम हमेशा साहबा वाली मिशनरी झील पे आता है। कोई प्यार से मोहब्बत से कभी पूछ भी लेना, इनको क्या देते हैं, इनको कौन देता है, क्या देता है, तो ये तो बांटने वाले हैं, ये तो दूसरों को देने वाले हैं, इनको कौन देगा? लेकिन इसका ये भी नहीं मतलब कि अल्लाह भूखा सुलाता किसी को, ये भी याद रखिए, ये अल्लाह के वादे हैं। तो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा अबू अय्यूब अंसारी कितना करते थे, हदीस सुन लीजिए। इब्ने उमर कहते हैं कि अबू अय्यूब अंसारी को खाने की दावत पे बुलाया, आपने घर में दीवार पर तस्वीर वाला पर्दा देखा, तो इब्ने उमर ने कहा असल में औरतों ने हमें ये पर्दा लगाने पर मजबूर कर दिया। तो अबू अय्यूब अंसारी कहने लगे, मुझे खदशा था कि ये काम कोई दूसरा शख्स करेगा, लेकिन तुमसे तवक्को नहीं थी, वल्लाही मैं तुम्हारे घर खाना नहीं खाऊंगा। और ये कहकर वापस चले गए। आपको नहीं यकीन आता, जाइए सही बुखारी में ये हदीस खोल कर पढ़े। ये उनकी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर थी, हम चुप बोलते नहीं, ये बुरी बात है, बुरे मैनर्स हैं, ये इनके ईमान थे, इन्होंने कहा मैंने नहीं खाना। और इसी तरह से और बहुत सारे वाक़ात हैं। बस इतना समझ लीजिए कि अचानक नहीं ये रज़ी अल्लाह अन्हु बने, कोई खूबी बंदे में होती है और फिर होती है और फिर होती है, फिर ही अल्लाह उनसे काम लेता है। इनकी नमाज़ों के किस्से मेरे पास लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इनकी नाम की बुक्स मौजूद हैं, आप ले लें। एक बड़ी खूबसूरत किताब है, यही तफ़ीमुस सुन्ना सीरीज़ की नई बुक आई है, सहाबा कराम के अहवाल और फ़ज़ाइल, उसमें भी आप इनके हालात पढ़ लें, आपको बहुत सारी हदीसें उस पर भी मिल जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल ये बहुत ही प्यारा अल्लाह का बंदा था, सारी ज़िंदगी जिहाद फी सबीलिल्लाह किया, और जिहाद के दौरान 80 साल की उम्र में इस्तंबुल में दफन हुए। आप कभी टर्की जाएंगे ना तो जाकर ज़रा इनकी हिस्ट्री तो वहाँ पढ़िएगा, क्या इनके हालात थे, और वाकई इन लोगों जैसे हम हो नहीं सकते, ये तो सच है। लेकिन हम इन लोगों जैसे बनने की कोशिश तो कर सकते हैं, अल्लाह ताला आपको मुझे बेहतरीन तरीके से ऐसा बनने वाली लिस्ट में ही शामिल कर दें। एक हदीस सुनाऊंगी जो इस पारे के बिल्कुल एंड पे फिट होगी, अभी सुन लें। अबू अय्यूब अंसारी ने एक हदीस सुनने की खातिर मदीना मुनव्वरा से मिस्र तक ऊँट का सफ़र किया। आप में से कोई गया मिस्र? और गए भी होंगे तो अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान से गए होंगे ना। मदीना से मिस्र तक का सफ़र, अल्लाह अकबर। रिवायत करने वाले कहते हैं कि अबू अय्यूब अंसारी मदीना से उकबा बिन आमिर के पास मिस्र तशरीफ़ लाए और कहने लगे, मैं तुमसे एक बात पूछने आया हूँ। जिन लोगों ने वो हदीस रसूलुल्लाह से सुनी है, अब उनमें से कोई भी ज़िंदा नहीं है सिवाय मेरे और तुम्हारे। आपने रसूलुल्लाह से मोमिन का पर्दा रखने वाली हदीस किन अल्फाज में सुनी थी? आप लोगों ने सुनी हुई है, वो जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला पर्दे में ले लेगा, वो हदीस है ये। यानी रिकन्फर्म कर रहे हैं कि या मुझे पता है या आपको, तो ज़रा रीचेक कर लेते हैं कि अल्लाह के नबी ने क्या कहा था। तो उस पर हज़रत उकबा रज़ी अल्लाह अन्हो ने क्या कहा, वो हदीस उनको सुना दी। और इन्होंने सिर्फ उस एक हदीस को सुनने के बाद वहाँ से रुखसती का फैसला कर लिया। अल्लाह अकबर, क्या बात थी इन लोगों की। ये गाजी, ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दुआ करिए कि आज आपको मुझे ये ज़ौक़े खुदाई लग जाए और हम ऐसे बन जाएं। कैसे अल्लाह ने इन लोगों को चुना, और ये कोई मशहूर लोग नहीं थे दुनिया में, इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था और वैसा नहीं था, और इनकी ज़िंदगी भी लोगों की हिदायत का ज़रिया थी और इनकी मौत भी हिदायत का ज़रिया बनी। अल्लाह हमें इनसे बेहतरीन फ़ायदा उठाने वाला बना दे। तो बहरहाल ये है जो आज के इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सोचिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त। सहाबा का टॉपिक एक दरिया है और इसको कूज़े में बंद करने के लिए आप मुझे यहाँ बिठा देते हैं। रोज़ नाकाम होती हूँ, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। आइए अब पढ़ते हैं इसका तर्जुमा और इसमें से अपने लिए अमल के नुक्ते लेंगे इंशाअल्लाह ताला।